Umständen. बहुत बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक निर्धन भक्त था और उसका एकमात्र पुत्र था जो कि बीमार पड़ गया। भांति भांति के इलाज कराए परंतु वो ठीक नहीं हो पाया। जब उसका बेटा मरणासन्न था, कोई फकीर उसके द्वार पर आया और उसने कहा, तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है यदि स्वाति नक्षत्र हो, उसमें बारिश हो रही हो, यदि किसी जंगल में किसी मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हो, उसमें स्वाति का जल हो और अचानक एक मेंढक उस जल के पास आ जाए परंतु पीछे से एक सांप आ जाए, सांप मेंढक पर छलांग लगाए परंतु मेंढक उछल कर कहीं और चला जाए, परंतु जो खरोच मेंढक को होगी वो खून और जो सांप है उसका विष जो निकलेगा और जो उस खोपड़ी में गिरेगा उस पानी में, यदि वो पानी तुम्हारे बेटे को पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकता है। शर्त असंभव थी। उस भक्त ने तुरंत पंचांग देखा, देखा और पाया कि वो स्वाति नक्षत्र है। घर से बाहर निकल पड़ा और जैसे ही निकल पड़ा बारिश होने लगी। जंगल की ओर मुड़ा, जंगल पहुंचा और पाया कि सामने खोपड़ी पड़ी है। अहोभाव से भर गया, कृतज्ञता से भर गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहा कि यहां तक तो सब ठीक है, अब आगे की शर्त भी पूरी कर दो। और उतने में ही एक मेंढक जल पीने उस खोपड़ी पर पहुंचा और देखते ही देखते एक सांप पीछे से उस मेंढक को पकड़ने के लिए वहां आया। मेंढक ने छलांग लगाई, सांप ने उसे खरोचा, सांप का विष और मेंढक का खून मिला और उस जल में पड़ा। ये दृश्य देखकर वो भक्त अति प्रसन्न हुआ, भगवान की प्रशंसा करने लगा और बहुत ही आनंद मगन अवस्था में, बहुत ही खुशी खुशी से उस जल को लेकर ले गया और उसका बेटा ठीक हो गया। सारी शर्तें असंभव थी परंतु जहां परमात्म कृपा हो जाए, जहां ईश्वरीय अनुकंपा हो जाए, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आप सभी के मन में ये संकल्प उठना कि यहां पहुंचना है। कहां गीत सुना ना, कितना सुंदर कितना प्यारा, मधुबन ये हमारा है, सारे जहां से अच्छा सारे जहां से न्यारा है। सभी के मन में संकल्प उठना, मधुबन से बुलावा आना, यहां पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होना, सभी तरफ से छुट्टी मिल जाना, ट्रेन का टिकट भी मिल जाना, सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाना और आप सभी यहां पहुंच जाना, क्या ये बहुत बड़ा भाग्य नहीं है? क्या ये असंभव नहीं था? था, परंतु हुआ ना। तो सबसे पहले तो अपने भाग्य को देखो और स्वयं ही स्वयं को क्या करो, शाबाशी दो, वारे मैं और वारे मेरा भाग्य किस भूमि पर आए हो, कहां पहुंचे हो, इस भूमि को साधारण भूमि समझने की गलती न करना। जिस भूमि पर आप आए हो, इस विश्व की, इस वसुंधरा पर ऐसी भूमि और नहीं। जिस स्थान पर आप पहुंचे हो, इस संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है, सर्व सबसे बड़ा तीर्थ है, यही तपस्या भूमि है, यही परमात्मा अवतरण भूमि है, ये वह भूमि है जहां पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। वो कहीं हिमालय पर नहीं आता, वो कहीं किसी और स्थान पर नहीं आता, ना ही किसी काशी में, ना ही किसी मथुरा में, ना ही किसी सारनाथ में और ना ही किसी जेरूशलम में। ये भूमि जहां आप पहुंचे हो, ये परमात्मा अवतरण भूमि है, परमात्मा मिलन की भूमि है। इस भूमि पर आना कोई व्यक्ति चाहे तो भी खुद नहीं आ सकता। कौन लाता है इस भूमि पर? जन जन के किए हुए पुण्य धकेल धकेल कर आत्मा को इस तक भूमि तक पहुंचाते हैं। चाहे कोई कितना भी आने का प्रयत्न करे, कितनी ही ट्रेन की रिजर्वेशन करा ले, फ्लाइट की रिजर्वेशन करा ले, परंतु जिसके भाग्य में नहीं है वो यहां नहीं पहुंच सकता। इसके लिए इस भूमि पर पहुंच जाना बहुत 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 बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है कौन सा? मुरझाते फूल। और फूल जब मुरझाते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? माली होता है। कौन से फूलों की बात हम करने वाले हैं, और किस माली की बात हम करने वाले, और किस बगीचे की बात हम करने वाले हैं, वो हम सुनेंगे। कौन सा ये उद्यान है, कौन सा ये गार्डन है, कौन सा ये गार्डनर है, और कौन से ये फूल है, कौन से ये पुष्प है। इससे पहले कि हम विषय की शुरुआत करें, एक बात हमें याद आ रही है। चीन में एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है, दार्शनिक, दूरांदेशी, विचारक, राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार माओत्से तुंग का चीन की क्रांति में बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा योगदान है। माओत्से तुंग ने अपनी जन्म आत्म कहानी में एक प्रसंग लिखा है। उस संस्मरण में उसने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था और मेरी मां, जो कि एक बहुत अच्छी बागवान थी, हमारे पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। वो बगीचा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, ऐसे ऐसे पुष्प उस वन में, उस बगीचे में थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते थे। कैसा वो रूप था और कैसा वो सौंदर्य था, और ऐसी वो सुगंध वहां से उठती थी, यहां तक कि कठोर से कठोर हृदय भी वहां पर दो पल ठहरता था और उन पुष्पों को देखता था। एक दिन मेरी मां, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और वो बीमार पड़ गई, और मैं बहुत छोटा था, उसे दुख था कि इस बगीचे की देखभाल अब कौन करेगा। तो मैंने अपने मां से कहा कि मां तुम परेशान ना होना, मां तुम दुखी ना होना, जब तक मैं हूं इस बगीचे को कुछ नहीं होगा। और माओत्से तुंग लिखता है कि 15 दिन तक मैंने उस बगीचे की देखरेख की, एक एक पत्ते की देखरेख की, एक एक फूल की देखरेख की 15 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि मां को वचन दिया था। 15 दिन पूर्ण हुए, मां भी ठीक हुई। मां बाहर आई और देखती है तो क्या, सारे ही वृक्ष, सारे ही पौधे मुरझा गए हैं। देखती है कि एक एक फूल कुंभला गया है, एक एक पौधा उदास है, और छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ से तूने ये क्या कर दिया। माँ से खुद भी रोने लगा, उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसने कहा, माँ मैंने तो एक एक फूल से प्यार किया, एक एक पत्ते से प्यार किया, एक एक फूल को चूमा और एक एक पत्ते को चूमा, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। माँ ने क्या कहा, और क्या किया तुमने। उसने कहा, मैंने एक एक पत्ती के धूल को झाड़ा, एक एक फूल पर जो धूल बैठती थी उसको झाड़ा, परंतु फिर भी ऐसा क्यों हुआ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? उसने कहा, मैं तो एक एक फूल को पानी पानी से धोया, प्यार से धोया, प्रेम से धोया, एक एक पत्ते को धोया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। मां भी हंसने लगी, कहने लगी कि बेटे, ये जो प्रकट है, ये जो दिख रहा है, ये जो मैनिफेस्टेड है, ये जो अभिव्यक्त हो रहा है, इसके प्राण फूलों में नहीं, इसके प्राण पत्तों में नहीं, इसके प्राण इसके जड़ों में है, जो कि अप्रकट है। तुमने वहां ही पानी नहीं डाला। फूलों के प्राण जड़ों में है, मनुष्य जीवन में जो करता है उसके प्राण उसकी चेतना में है। जो हम बाहर है, जो बाहर कर्म हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति बीज से हो रही है, बीज चेतना है। इस चेतना को पानी डालना है। ये जो बीज है, इस बीज में ही उस वृक्ष के प्राण है। जब तक इस बीज को पानी नहीं डालेंगे और इस बीज को पोषित नहीं करेंगे, वो बीज पल्लवित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। हम आज बात करेंगे जीवन के की, इस बगिया की। हमारा जो जीवन है और इस जीवन में जो बगिया है, उसके भी बीज है। जब तक वो बीज स्वस्थ नहीं, बाहर जो जीवन है वो रुग्ण है, जब तक वो बीज पोषित नहीं होता, बाहर जो भी हो रहा है, बाहर की जो भी अभिव्यक्ति है, बाहर का ये जो संसार का विस्तार हमारा है, सब व्यर्थ है। पैरों में बेड़ियां बंधी है, घसीटते हुए इस जीवन को हम जी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, कहां जाना है, किस ओर, किस दिशा में, दिशाहीन ये जीवन बीत रहा है। हम अकेले थे, कोई तो मिला जीवन में, फिर भी अकेले ही है। सोचा कि ये अकेलापन भर जाएगा किसी के मिलने से, परंतु जो बुद्धिमान है उन्होंने तो पा लिया कि अकेलापन भरा नहीं, किसी को ये जानने में 3 घंटे लगे, किसी को ये जानने में 3 मास, किसी को ये जानने में 3 साल, और किसी को 30 साल हो चुके हैं, अब तक ये नहीं समझ में आया कि मनुष्य अकेला ही है। जिस जिस को साथी बनाया था, एक घाव दूसरे घाव से यदि मिले तो हीलिंग कैसे होगी? एक प्यासा दूसरे प्यासे से मिले तो प्यास कैसी बुझेगी? पर हमें लगा हम अकेले हैं, कोई मिल गया तो यह अकेलापन मिट जाएगा। ये लोनलीनेस मिटी नहीं और ही गहरी होती चली गई और हम कहीं ना कहीं इसमें खो गए हैं। एक शिकारी जंगल में शिकार करना करता था, भटक गया मार्ग, 3 दिन जंगल में भटकता रहा, कोई नहीं मिला, कोई मनुष्य नहीं मिला, परंतु और ही भयभीत जंगली जानवर। और अचानक 4थे दिन आनंदित हो उठा जब देखा एक दूसरा व्यक्ति पेड़ के पास बैठा हुआ है। भाग कर उसके पास गया और कहा कि मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तुम मिल गए। बहुत खुशी हुई। उसने कहा मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी भटका हुआ हूं। और दोनों ही बहुत खुश हो गए। जीवन में दोनों ही अकेले थे और अभी अचानक जीवन में आनंद आ गया। और थोड़े समय के बाद फिर सोचने लगे, परंतु फिर भी तो हम भटके हुए ही है। जब तुम अकेले थे तब भी तो तुम भटके थे और मैं भी भटका था, अब हम दोनों ही भटके हुए हैं। जिसे संसार विवाह कहता है। जीवन की इस अनंत दौड़ में कितने ही साथी मिले, पर हम कहीं ना कहीं अकेले ही रह गए, या फिर अकेले ही थे, भ्रम हुआ कि नहीं है, सोचा कि कोई है पर था नहीं, भास था, सुख का भास था। इस बगिया को, आज जिस बगिया की हम बात कर रहे हैं वो जीवन की बगिया है। जिस माली की बात हम कर रहे हैं जो बार बार मुरझाता है और बार बार दुखी होता है और उदास होता है और कुंभला जाता है, वो है आत्मा। इस देह में जो चेतना है, जो मैं स्वयं हूं, जो यहां पहली बार आए हैं, उन्होंने अपना परिचय यहां पाया होगा। जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है, पर जो पहली बार आए हैं उन्हें अपना ही परिचय हुआ होगा इस माली का। जीवन बगिया है, जीवन वो उद्यान है, आत्मा वो माली है, फूल कौन से ऐसे, वो कौन से फूल है, जैसे ही वो मुरझाते हैं माली उदास होता है, माली कुंठित होता है। कौन से वो फूल है, कौन से वो फूल हो सकते हैं? हम तो माली हैं, हम माली हैं, बगिया जीवन है, फूल कौन से हैं? इस विषय को कई तरह से, कई सारी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, परंतु हम आज दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो कोई एक भिन्न है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नए भी बैठे हुए हैं और यहाँ आना अर्थात जीवन का टर्निंग पॉइंट। यहाँ से जाने के बाद अब जीवन वो नहीं रहेगा जो पहले था। जिस मुकाम पर आए हो, जिस मंजिल पर पहुंचे हो, अब यहाँ से जो यात्रा चालू होती है वो यात्रा नहीं है जो बचपन से हम अब तक करते आए थे। यात्रा ने अपना रूप, यात्रा ने अपनी दिशा, यात्रा ने अपना रूप और रंग बदला है। यहां आकर एक धक्का लगा है चेतना को, एक गहरा धक्का। एक धक्के के बाद ही जीवन परिवर्तन होता है। किसने लगाया ये धक्का? जरूरी नहीं है जो यहां पर बैठकर बोलते हैं उन्होंने, यहां के वातावरण में एक अलौकिक जादू है। शुद्ध संस्कृति का यह द्वीप है, यहां की एक एक चीज, एक एक वस्तु, एक एक आत्मा, एक एक स्थान सभी ने अनुभव किया होगा, साधारण नहीं है। यहां कुछ और है, यहां की तरंगों में कुछ ऐसी अलौकिकता है, आत्मा चाहे तो भी स्वयं को नहीं बचा सकती उस अलौकिकता से, वो छाप उस पर पड़नी ही है। तो क्योंकि यहां से जाने के बाद का जीवन वह नहीं रहेगा जो अब तक था, केवल नयों का नहीं जो पुराने हैं उनका भी, क्योंकि यहां आते ही चेतना में बल भर जाता है। केवल किसी के बोल नहीं, किसी के शब्द नहीं, किसी की वाणी नहीं, किसी का क्लास नहीं, कुछ और। साधारण शब्दों के पीछे एक अलौकिक शक्ति यहां काम करती है। सात फूलों की चर्चा हम आज करेंगे। सातों में से एक भी यदि फूल मुरझाया तो आत्मा उदास होगी, चाहे नए बैठे हैं चाहे पुराने, चाहे अभी अभी आए हुए चाहे बहुत लंबे समय से ज्ञान में चल रहे। सातों चीजों से, सात फूल से एक भी फूल यदि मुरझाया तो माली उदास होगा, फिर वो खुशी नहीं, फिर वो सौंदर्य नहीं, फिर वो उपवन में संगीत नहीं, फिर वो सुगंध नहीं, वो सौरभ नहीं उठेगा इस उपवन से, इस उद्यान से। जीवन उदास होगा और तुम्हें उदास देखकर दूसरे भी उदास होंगे। कौन से वो फूल है? एक तो हो सकता है आत्मा के साथ गुण, पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम कुछ और चर्चा करेंगे। अभी ट्रैफिक कंट्रोल है, क्योंकि आपने कहा आत्मा के साथ गुण, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, अलर्ट बैठ जाए और यह देखे कि आत्मा यहां पर विद्यमान है और ऊपर से इन सातों ही फूलों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। केवल पड़ नहीं रही है, मुझ आत्मा में ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति समा रही है। पहला फूल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यदि वो मुरझा जाए तो सारा ही दिन मुरझा जाता है, और यदि दिन मुरझा जाए तो धीरे धीरे जीवन मुरझाने शुरू होता है। सबसे पहला फूल है अमृत वेला। दिनचर्या के हम सात फूलों की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला फूल है अमृत वेला। अमृत पान करने का यह समय है। जो नहीं उठते वो यहां से संकल्प लेकर जाना है कि कल से ही, क्योंकि सुबह का जो समय है वातावरण विकार से रहित है, शुद्ध है, पवित्र है। संसार की आत्माएं सोई पड़ी है, वातावरण में जो वाइब्रेशन है श्रेष्ठतम है। यदि देह के तल पर जीना है तो फिर उठने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि देह से ऊपर उठना है, आत्मा तक पहुंचना है और आत्मा के जगत में प्रवेश करना है और आत्मा के जगत में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों के द्वार को खोलना है, उसका स्वर्णिम द्वार है अमृत वेला। तो सबसे पहला यदि ये फूल मुरझा जाए तो सारा दिन मुरझा जाता है। यदि इसकी शुरुआत शक्तिशाली हो जाए दिन की फर्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो है, जहां पर सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में होता है, आंख खुलते ही पहला संकल्प जो दिया जाए मन को वो सारे दिन भर चलता है। अवचेतन मन की चेतनाओं को, अवचेतन मन की शक्तियों को यदि जागृत करना है, पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसका टाइम है अमृत वेला। जो भी श्रेष्ठ संकल्प यदि दिया जाए, यदि जीवन में जो परिवर्तन लाना है वो हम संकल्प करें, तो स्वतः ही वो जीवन में आने लगेगा। तो जो नहीं करते हैं, या समय से नहीं करते, या कभी समय पर करते और कभी नहीं करते, या कभी करते तो है रोज परंतु उसमें नींद का समावेश है, शक्ति रूप नहीं है, जागरण की अवस्था नहीं है, अपने इस बात को चेक करें। बहुत समय पहले मधुबन में एक बार जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे, अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा 2014 में, जस्टिस कृष्णा अय्यर, लगभग 100 किताबें उन्होंने लिए हैं, पद्म विभूषण प्राप्त, इंद्रप्रस्थ है यहां पर मधुबन में, शांति स्तंभ जो है सामने बिल्डिंग बनी है इंद्रप्रस्थ, वहां वो रुके थे। और इसी यज्ञ के एक बहुत वरिष्ठ भाई जिनका नाम जगदीश भाई जी था, उन्हीं के कमरे के बाजू में थे। जगदीश भाई ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैंने देखा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर सुबह 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लिखना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें किताबें लिखनी होती है। जबकि वो मधुबन में आए थे, कल्चरल प्रोग्राम था, बीच से छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ही ये नियम बना दिया था। वो ना तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, परंतु जीवन ही ऐसा डिसिप्लिन था कि उठना है मतलब 2 बजे ही उठना, और सोने का टाइम फिक्स था, चाहे कुछ भी हो जाए वो पार्टी छोड़कर आ जाएंगे, पर 10 बजे सोना मतलब 10 बजे सोना, इतना अपने नियमों पे पक्के थे। यहां पर मधुबन में इंद्रप्रस्थ में जब आए थे तब यहां की दिनचर्या भी जैसी उनकी घर की दिनचर्या थी वैसी ही थी। जो भी महान कार्य होते हैं उनके लिए नियम संयम मर्यादाओं की आवश्यकता है, बिना उसके ये कार्य नहीं हो सकते। ऊपर से व्यक्ति का जो जीवन दिख रहा है, अंदर क्या है? आज सुबह आपने आज ही सुनी ना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, मनमोहिनी दीदी सुनाया करते हैं कि बाबा एक बार थोड़े अस्वस्थ थे, डॉक्टर ने कहा था शुगर बढ़ गई है और बीपी भी कम ज्यादा हो रहा है, बाबा आपको रेस्ट करने की आवश्यकता है, अमृत वेले आप नहीं उठो। तो मनमोहिनी दीदी और बाकी सारी बड़ी बहनें बाबा के पास गई और बाबा को बहुत समझाया, बाबा नहीं माने। बाबा ने कहा कि सुप्रीम डॉक्टर कहता है उठो और तुम्हारा डॉक्टर कहता है मत उठो, मैं किसकी सुनूं? फिर भी बाबा वो स्टबन, फिर भी दीदी बिल्कुल नहीं मानी। दीदी ने कहा आपको हमारी बात मानना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मैं सोचूंगा। दूसरे दिन हिस्ट्री हॉल में जब योग चल रहा था, बाबा से ओढ़ के, शॉल ओढ़ के अपने सिर पर चुपचाप आके पीछे बैठ गए। इतना प्यार अमृत वेले से, 60 साल की उम्र में भगवान की प्रवेशता उनके तन में हुई, 93 एज तक वो जीवित रहे, साकार में रहे, 33 साल की तपस्या में एक दिन भी अमृत वेले मिस नहीं किया। कैसी साधना होगी वो, कैसे नियम स्वयं स्वयं से बनाए होंगे, एक दिन भी नहीं, नॉट अ सिंगल डे, यह नियम यहां से बना के जाना है, यह प्रतिज्ञा इस भूमि से करके जाना है कि हमारा भगवान से मिलन होता है सुबह, आत्मा में शक्ति भरती है, आत्मा में अमृत भरता है, ना भक्ति में भी। इसका गायन है, हर धर्म ने इस ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया है। सुबह का प्रहर, प्रभात, भगवान को याद करने का ये समय है, सिमरन करने का समय है। कबीर ने जिसे सुरती कहा, सुरती का यह समय है, नानक ने जिसे सुरती कहा। तो सबसे पहला फूल, समय हमारे पास कम है, फूल ज्यादा है। दूसरा, तो सभी पक्का करके जाएंगे यहां से, उसके लिए योग कैसे किया जाए और क्या करना चाहिए योग में, सेवा केंद्र पर जाकर विस्तार से सीखा जा सकता है। दूसरा नियम ज्ञान स्नान। दूसरा जो फूल है, यदि वो मुरझाया तो भी जीवन सारा दिन मुरझा जाएगा, वो है ज्ञान स्नान। अर्थात यहां पर जिसे मुरली कहा जाता है, मुरली अर्थात केवल ज्ञान सुनना नहीं, सुनते सुनते उसको धारण करना। जो सुबह चित्त शांत हो गया है अमृत वेला, अब उसको ज्ञान से भरना है। पता नहीं कौन सी ज्ञान की पॉइंट, हमारे कितने ही समय का जो प्रश्न था, समस्या थी, उसका हल लेकर आ जाए। ऐसी कोई ना कोई टचिंग हो जाए वहां बैठे बैठे कि जो हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे किया जाए, और अचानक ऐसी बात चल जाए जिसका शायद संदर्भ भी ना हो, पर उसमें हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो दूसरा जो फूल है वो कौन सा है? ज्ञान स्नान करना, अर्थात मुरली सुनना। यदि जा नहीं सकते किसी कारण से तो घर पे ही बैठकर पढ़ना, यदि रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक बार जाना, दो बार जाना, ये नियम यहां से पक्का करके जाना है। और केवल पढ़ना नहीं, उसको पढ़ते पढ़ते ही धारण करना अपने अंदर, उसकी मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालना, उसके ऊपर मनन करना। ज्ञान से केवल व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, परंतु ज्ञान के चिंतन से और मनन से और अध्ययन से, उसकी गहराई में जाने से। जब तक ऊपर ऊपर है आत्मा में बल नहीं भरेगा, फिर वही चिंता, वही प्रश्न, वही सारी मुरझाइश, वही दुख जीवन में, और वही सारे प्रश्न जिनका कहीं उत्तर नहीं मिलता, किसी किताब में उत्तर नहीं मिलता, क्लासेस में उत्तर नहीं मिलता, केवल वाह वाह थोड़े देर के लिए, पर बाद में हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? सुनते समय तो बहुत अच्छा लगता है, सभी क्लासेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, परंतु जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं होता? फिर शायद कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग जैसा हो रहा है, गए कथा में बैठे सुने और आ गए, ये ज्ञान मार्ग है। तीसरा फूल भोजन। तीसरा है भोजन। जाति दोष, स्थान दोष, संस्कार दोष, अर्थ दोष, सभी दोषों से वो अन्न मुक्त हो। किस तरह से कमाई की जा रही है, किस तरह से पैसा आ रहा है, वो भोजन भी अर्थ दोष हमारे मन को प्रभावित करता है। अर्थ, कौन सा व्यक्ति उस भोजन को बना रहा है, किन संकल्पों के साथ बना रहा है, किस स्थान पर बना रहा है, स्थान दोष, उन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। किसकी याद में किन संकल्पों के साथ हम भोजन स्वीकार कर रहे हैं, उदासी से कर रहे, दुख से कर रहे, क्रोध से कर रहे, हिंसक भावना से कर रहे हैं, कंप्लेंट के साथ कर रहे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये भी टेस्टी नहीं है, वो भी टेस्टी नहीं है, इस कंप्लेंट का भाव जहां पर है, शिकायत भरा भरी मनोदशा है, तो वो भोजन कभी भी शक्ति नहीं देगा आत्मा को। वो भोजन भी एक प्रार्थना बन जाए, एक योग की प्रक्रिया बन जाए। यदि जल्दी जल्दी में, दुख में, उदासी में टीवी देखते देखते हम खा रहे हैं, कौन से वाइब्रेशंस आत्मा में जा रहे हैं और कैसे आत्मा पल्लवित पुष्पित होगी, और कैसे वो सुगंध और कैसा वो संगीत उससे निकलेगा, और हो सके तो 8 बजे तक कम से कम नो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, परंतु बाद में, सुबह अमृत वेला शक्तिशाली हो, फिर ज्ञान स्नान हो, चिंतन हो, मनन हो, अध्ययन हो, भोजन भी याद में बनाना और याद में स्वीकार करना। जो माताएं यहां बैठी है, अपने ही घर में भोजन को अगर भोग नहीं लगाते हैं, तो यहां से जाते ही सबसे पहला नियम बनाना है भोग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। गीता में लिखा है कि मुझे केवल पत्र पुष्प भी कोई बहुत प्रेम से खिलाता है तो मैं उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करता हूँ, उस धन्यवाद के भाव के साथ। उस किसान को भी धन्यवाद, तो सभी को धन्यवाद जिसने बनाया, सभी को इतनी सकारात्मक पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसे स्वीकार करना, तब वो शक्ति बनेगी। अगर ये नहीं करते हैं तो फूल, अगर ये मुरझाता है तो माली भी मुरझाएगा, अगर ये फूल कुंभलाता है तो माली भी उदास होगा। फिर उसके बाद है कर्मयोग, फोर्थ, चौथा कर्मयोग। सारी दिन के हमारे जो भी भिन्न भिन्न कर्म हैं, वो किस दशा में हम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनके पीछे, क्या स्वार्थ से भरे हैं, क्या दुख से भरे हैं, क्या छल कपट उसमें भरा हुआ है, कोई लालच उसमें भरा है, लोभ उसमें भरा हुआ है, क्या है उसमें। जो कर्म हो वो योग से जोड़ना है, निस्वार्थ हो, श्रेष्ठ हो। ये शब्द हमने सुने हैं और बहुत ऊंचे शब्द है, परंतु क्या वैसे हमारे कर्म हैं? किसी को दुख देने वाले तो नहीं है, उदास करने वाले तो नहीं है, ऐसे बोल बोल रहे कि जिससे किसी ना किसी का हृदय पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाते हैं आत्मा, ऐसे बोल तो नहीं। तो अगला फूल कौन सा है? कर्म योग। उसका भी बीज जो है वो है श्रीमत। सबसे पहला था अमृत वेला, हमने कहा बीज बहुत आवश्यक है, उसका बीज है संकल्प। पहले ही रात संकल्प करना कि मुझे उठना है। फिर है मुरली, मुरली का बीज है परमात्मा से प्रेम, क्योंकि मुरली भगवान के महावाक्य है। तीसरा है भोजन, उसका भी जो बीज है भोजन का बीज वो है हमें, वो एक संकल्प है कि हमें पवित्र बनना है, शुद्धता जीवन में लानी है, शुचिता जीवन में लानी है। कर्मयोग, कर्मयोग जो है उसका भी जो बीज है कि हमें खुश रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना है दिन में जिससे हम दुखी हो जाए या दूसरे दुखी हो जाए, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है। उसके बाद है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल पता है सभी को, बीच बीच में जो गीत बजता है, किस लिए बजता है वो? हम भाग रहे हैं, हमें रोकने के लिए, स्पीड ब्रेकर है वो। संकल्प दौड़ रहे, इतने भाग रहे, इतने भाग रहे, इतने भाग रहे, पता नहीं कहां भाग रहे, हजारों संकल्प आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर है हमें रोकने के लिए। यहां तो टाइम फिक्स है, पर हम अपना अपना टाइम अपने रीति से एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या के अनुसार, परंतु बीच में रुकना बहुत आवश्यक है। जैसे एक राजा था और उसको कहा गया कि उसे बहुत शक्तिशाली एक व्यक्ति चाहिए था। चार लोग उसके पास आए और उसका जो एक जादूगर था परीक्षा लेता है कि इन चारों में से कौन शक्तिशाली है। तो वो जादूगर एक शर्त रखता है कि खेत में ले जाता है और सामने एक खलियान है, एक झोपड़ी है, उसमें जो वस्तु रखी है इन चारों को एक एक करके जाना है और लेके आना है। पहला व्यक्ति निकलता है और जादूगर ऐसी जादू करता है कि बहुत आंधी तूफान आते हैं, तो पहला व्यक्ति तो बीच में भयभीत हो जाता है और गिर जाता है। दूसरा निकलता है, पहले को तो क्रॉस करता है, पर जादूगर अपनी माया से आंधी तूफान और तेज करता है तो दूसरा भी गिर जाता है। तीसरा व्यक्ति निकलता है, वो दूसरे को भी क्रॉस करता है, परंतु आंधी तूफान इतना ज्यादा कि बीच में अभी भूकंप आने लगता है, तीसरा भी गिर जाता है। चौथा जो व्यक्ति है वो निकलता है बहुत धैर्यता पूर्वक, पहला जो गिरा हुआ है उसको क्रॉस करता है और कहता है आई एम ऑल राइट टिल नाउ, अब तक मैं ठीक हूं, फिर आगे बढ़ता है। दूसरे को क्रॉस करता है, फिर कहता है आई एम ऑल राइट टिल नाउ, उसको क्रॉस करके फिर आगे जाता है और थोड़ा डरता है, पता नहीं क्या होगा। तीसरा दिखता है, उसको क्रॉस करता है, कहता है आई एम ऑल राइट टिल नाउ, फिर जाता है और पहुंच जाता है वहां तक। झोपड़ी में घोड़ा होता है, घोड़े में बैठ के वापस आता है। जादूगर का जादू पूरा होता है, राजा पूछते हैं तुम लेकर आ गए? वो कहते हैं हाँ। तो बोलते तुम अब कैसे हो? वो कहते हैं आई एम ऑल राइट टिल नाउ। दिनचर्या में ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात अब तक मैं ठीक हूं, अब तक जो हुआ वो ठीक चल रहा है, स्वयं की चेकिंग आई एम ऑल राइट टिल नाउ। सीधा रात को चेकिंग नहीं, बहुतों से झगड़े कर लिए और फिर सीधा रात में चेकिंग हो रही है, ठीक किया या खराब किया, क्या किया पता नहीं। तो ये जो चेकिंग हो क्या हो, स्वयं को चेक करना, स्वयं के संकल्पों को चेक करना, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, ये आगे की अभ्यास है योग अभ्यास में। तो ये एक बात। उसके बाद नेक्स्ट जो फूल है, अगर ये भी मुरझाता है तो भी दिनचर्या सातों में से एक चीज भी मुरझाना नहीं चाहिए, तो माली परेशान होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज है वो है शाम का योग, नमाज शाम का योग जिसको कहा जाता है। शाम को समय है जब हम निवृत्त हो गए अपने कार्यों से, ये समय है स्वयं को देखने का। स्वयं को अचल अड़ोल अगर बना के रखना है इस जीवन में, तो दिनचर्या में बहुत सारी हलचल होती है, यहां अभी फिर से रुकना है, लंबी चेकिंग है ये थोड़ी यहां पर। और योग स्वयं के जो मन में जो संकल्प है, ट्रैफिक जो चल रही है उसको शांत करके फिर से उसी स्थिति में आना है। सुबह हमने जो कुछ सोचा था वो हुआ, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लान किया था वो हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, इसकी चेकिंग, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस से आने के बाद ये टाइम निकालना पड़ेगा, ये टाइम चलते फिरते भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं एक जगह बैठ के करना है, सेंटर पर जाकर ही करना है, गार्डन में घूमते समय। परंतु शाम की जिसको वॉक कहेंगे, एकांत में, वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नमाज शाम कितने हो गए, छह। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ऐसा एक फूल है कि ये यदि मुरझाता है तो माली बहुत दिनों तक बीमार रहता है, कौन सा होगा फूल, कौन सा है वो, तो उसमें आ गया सब बातों में, चार्ट चेकिंग में, दिनचर्या में। एक और एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है संबंध, रिलेशनशिप, हमारे संबंध कैसे। यदि इन संबंधों में झगड़ा हो जाए, मन मुटाव हो जाए, मलोमालिन्य, किसी से झगड़ा टकराव हो जाए, डिबेट हो जाए, वाद विवाद हो जाए, मैं राइट वो कहेगा मैं राइट, शब्दों की टक्कर, संस्कारों की टक्कर हो जाए किसी से, ये अगर होती है तो भी जीवन ही पूरा मुरझा जाता है, उससे रिकवरी का जो पीरियड है बहुत लंबा है। इसके लिए सारे ही हमारे जो संबंध है उसमें दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो हमारे जो संबंध हो उसमें न्यारापन हो, डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा जब भी किसी के पास जाते हैं वहां पर वो जो फैमिलियरिटी है, जो क्लोजनेस है, वहां पर फिर बहुत सारी चीजें होने लगती है, वो फ्रेशनेस वहां खत्म हो जाती है। और वस्तुतः जिससे ज्यादा प्यार है उससे तो बहुत अधिक डिटैच, क्योंकि डिटैचमेंट यदि नहीं है उस संबंध में, किसी भी संबंध में संसार के, तो वहां पर फिर लगाव, आसक्ति, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, और उनका फिर पूर्ण ना होना, और फिर उदास होना, डिप्रेस्ड होना, फ्रस्ट्रेट होना, वो सब कुछ चालू हो जाएगा। तो ये अंतिम फूल है। तो सबसे पहला कौन सा था, अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन, तीनों समय का भोजन। याद में मौन में अगर भोजन करे तो बहुत अच्छा, मौन में अगर करने की जिसको आदत है उनको तो बहुत अच्छा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहना। उसके बाद कर्म योग, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करें। वैसे तो यहां सेट हुआ है, परंतु यदि वो हमारी दिनचर्या के थोड़ा हमको नहीं लगता है ठीक, तो हम अपना खुद सेट करें। उसके बाद शाम का योग, कितने यहां बैठे हैं जो शाम का योग करते हैं, बहुत कम। शाम का योग चालू करना है, जो आनंद सुबह आता है वही शाम को भी आना चाहिए, जो अशरीरीपन की अनुभूति, जो परमात्मा प्रेम की अनुभूति सुबह होती है वो भी शाम को भी होनी चाहिए, और रोज, ऐसा नहीं कभी कभी, रोज। नुमा शाम का योग, वहां पर भी वही आनंद से आत्मा भर जाए जो सुबह भर जाती है, वही संगीत उसमें आ जाए। और अंतिम था संबंध, तो संबंध में मिठास, संबंध में मधुरता, संबंध में शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, और एक महत्वपूर्ण चीज संबंध में साक्षीपन, संस्कार मिलन, शुभ भावनाएं, संस्कार मिलन। इसमें हमारा ऐसा कुछ ना हो, एडजस्टिंग नेचर हो कि टकराव हो जाए किसी से, क्योंकि अगर टकराव हो गया तो सब खत्म हो जाता है, फिर योग भी गया सब गया, फिर बस वही आत्मा सामने दिखती रहती है और कुछ नहीं दिखता है। इसके लिए एक सूक्ष्म अभ्यास है, अमृत वेला, कुछ कुछ आत्माओं को माफ कर दो और कुछ कुछ आत्माओं से माफी मांग लो और स्वयं को हल्का कर दो। इतनी ये सात फूल है, सातों ही फूल के ऊपर फिर से चिंतन करना है और इस मधुबन भूमि में ये संकल्प करके जाना है कि एक भी फूल को मुरझाने हम नहीं देंगे। ये एक एक फूल बहुत बड़ी बड़ी साधना है, वास्तव में इतना आसान नहीं है, साधना है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हम एक छोटी सी कहानी कहेंगे और इस चर्चा को अंत करेंगे। किसी एक राजा के तीन पुत्र थे और उसको अपना राज्य का उत्तराधिकारी किसी को बनाना था। राजा अभी बहुत बीमार था तो उसने एक परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा ऐसी ली कि तीनों से कहा कि तीनों के अलग अलग महल है और बहुत बड़े बड़े महल है, उनको कहा ये 100 सिक्के ले लो और ऐसी चीज से अपने घर को भर दो, अपने महल को, इन 100 सिक्कों से शाम तक। तो पहला जाता है, वो सोचता है इतना बड़ा महल 100 सिक्के में क्या होगा, कैसे भरू। वो सोचता है कि मैं इनको धन से भरता हूं, पर 100 से तो नहीं होगा, तो इसको जुआ खेलने जाता है ताकि और धन मिल जाए और भर दूं। पर जैसे कि अक्सर होता है, वहां जाने वाला जो सोच कर जाता है वह होता नहीं है कभी, तो जाता है और जो है उसके पास उसको भी हार के आ जाता है, तो कहां से कुछ भरेगा, वो तो खाली रह जाता है। दूसरा जो जाता है वो सोचता है इतना बड़ा महल कैसे मैं भरूं और इतने कम पैसों में। वो सोचते हैं हाँ एक हो सकता है, जो कूड़ा करकट मिलता है बाहर बहुत सस्ता होता है, उससे भरेंगे तो शायद भर जाएगा, क्योंकि शर्त है कि महल भर जाए। तीसरा भी जो बेटा होता है वो क्या करता है वो हम आगे देखेंगे। तो जब तीनों ही भर जाते हैं और शाम को राजा पूछता है क्या हुआ, और सबसे पहले के महल के सामने जाते हो तो देखता है कि महल खाली है, जो दिया था अब वो भी नहीं रहा उसमें। दूसरे बेटे के पास जाते हैं तो देखता है कि इसमें तो दुर्गंध आ रही है, इतना दुर्गंध से भरा पड़ा है वो महल। और तीसरे के महल के पास जब जाते हैं तो देखता है सुगंध आ रही है और एक दिव्य आलोक है, उसने अपने महल को प्रकाश से भरा था, दिए से भरा था, पुष्प से भरा था, अगरबत्ती से भरा था। इस जीवन के महल को स्वयं स्वयं को देखना है, हमने किससे भरा है। अपने जीवन ग्रह को अगर देखने के बाद लगे ये खाली तो नहीं रह गया, कुछ भी नहीं है उसमें, ऐसा तो नहीं है। एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई थिंक लाइफ हैज स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। सारा जीवन खोज करता रहा एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, और जीवन के अंत में पाता हूं कि जीवन तो निकल गया उंगलियों से, कुछ पाया ही नहीं, वैक्यूम, क्या पाया। ऐसा तो हमारी अवस्था नहीं है कि जीवन खाली के खाली रह गया, या फिर ऐसे तो हमने कि जीवन को दुर्गंध से भर दिया है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है और विकार है, और नकारात्मक भाव से भरे हुए, किसी के प्रति घृणा है, किसी का बदला लेने की इच्छा थी नहीं हो पाया, इसलिए दबी दबी वो भावना अभी भी है, मिल जाए सामने से तो ले भी लेंगे किसी न किसी रूप से। कहीं ऐसा दुर्गंध तो नहीं भरा है, या फिर हमने अपने जीवन को प्रकाश से भरा है। अब जिस महल में आप सभी आए हो, ये सृष्टि का सबसे सुंदर महल है, शीश महल है ये। इस शीश महल में आकर अपने जीवन को उसी आलोक से और उसी आभा से और उसी प्रकाश से भरकर यहां से जाना है, ताकि वो प्रकाश विश्व को प्रकाशित करे, ताकि वो संगीत ऐसा निकले कि आसपास जो भी उस महल के संपर्क में आए सभी झूमने लगे और गाने लगे, और वो सौरभ ऐसा निकले इस महल से कि आसपास की दुर्गंध भी समाप्त हो जाए। ओम शांति।